السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان نے COVID-19 کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں پھنسے ہزاروں پاکستانیوں کی واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا ہے. آج متحدہ عرب امارات سے 180 پاکستانی پشاور پہنچ گئے ہیں اور وہ پشاور کے قریب 14 روز تک قرنطینہ میں رہیں گے. پی آئی اے نے بین الاقوامی پروازوں کو جزوی طور پر بحال کر دیا ہے اور حکومت کی خصوصی اجازت سے مختلف ملکوں میں پھنس جانے والے پاکستانی باشندوں کو واپس لا رہی ہے. امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیلزاد نے منگل کو پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے. اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں افغان امن عمل سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں افغانستان میں امریکی ریزولوٹ سپورٹ مشن کے کمانڈر جنرل آسٹن ملر بھی موجود تھے. امریکی سفارت خانے کے بیان کے مطابق پاکستانی عسکری قیادت نے افغان امن عمل اور دیرپا استحکام کے لیے اپنا عزم دہرایا. پاکستانی فوجی قیادت نے افغان مسئلے کے سیاسی حل میں تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. مغربی ملکوں کا دفاعی اتحاد نیٹو نے افغان طالبان سے کہا ہے کہ وہ اپنے حملے روک کر امریکہ اور طالبان کے درمیان فروری میں ہونے والے معاہدے پر پوری طرح عمل درآمد کریں. یہی افغان تنازع کا واحد اور پرامن حل ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹن برگ نے منگل کو نیوز کانفرنس کے دوران طالبان کے حملوں کو نقصان دہ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ طالبان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ میدان جنگ میں جیت نہیں سکیں گے, لہذا انہیں بات چیت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا. اسٹالٹن برگ نے طالبان حملوں کو امن عمل کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغان تنازع کو بات چیت سے حل کرنے کا یہی ایک پرامن راستہ ہے. پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ جاری ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 272 کیسز کے اضافے کے ساتھ تعداد کل 6,000 ہو گئی ہے. ہلاکتوں کی تعداد بھی بڑھ کر 113 ہو گئی ہے. پنجاب میں کیسز کی تعداد 2,945, سندھ میں 1,518, خیبر پختونخوا میں 865, بلوچستان میں 240, اسلام آباد میں 140, گلگت بلتستان میں 234 اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں 46 کیسز موجود ہیں. پاکستان میں اس مرض سے اب تک 1,446 لوگ صحت یاب ہو چکے ہیں. ملک بھر میں وفاقی حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن میں توسیع کے ساتھ کچھ نرمی کیے جانے کے بعد چند مخصوص دکانیں اور کاروبار کھل گئے ہیں, جس کے بعد سڑکوں پہ ٹریفک میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. پاکستان میں کرونا وائرس کے جائزہ اور اقدامات کے لیے قائم قومی رابطہ کمیٹی کی جانب سے لاک ڈاؤن میں جزوی نرمی کے فیصلے کے بعد پنجاب, سندھ اور اسلام آباد میں محدود پیمانے پر کاروباری سرگرمیاں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں. وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں منگل کو قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں لاک ڈاؤن کو مزید 2 ہفتوں کے لیے بڑھانے کی منظوری دی گئی تھی. البتہ بعض صنعتوں اور کاروبار کو حفاظتی اقدامات کے ساتھ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے. قومی رابطہ کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں پنجاب, سندھ اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں محدود پیمانے پر کاروباری سرگرمیاں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں, جبکہ خیبر پختونخوا حکومت اس حوالے سے بدھ کو کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کر رہی ہے. اس وقت دنیا بھر میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 20,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے. تاہم بہت سے ممالک میں ٹیسٹ کی سہولیات کی کمی کے باعث اس میں تیزی سے اضافہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. بھارت نے اعلان کیا ہے کہ پیداواری شعبے اور زراعت کے شعبے 20 اپریل سے کھول دیے جائیں گے. تاہم ملک بھر میں لاک ڈاؤن کی پابندیاں آئندہ ماہ کے آغاز تک جاری رہیں گی. امریکہ میں کرونا وائرس کے باعث ایک دن میں ریکارڈ ہلاکتیں ہوئی ہیں. منگل کو ملک بھر میں کرونا وائرس سے 2,228 افراد ہلاک ہوئے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارے صحت کو امریکہ کی جانب سے دی جانے والی امداد روکنے کا اعلان کیا ہے. منگل کو وائٹ ہاؤس میں معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران صدر ٹرمپ نے الزام لگایا کہ WHO کی نااہلی کی وجہ سے دنیا میں کرونا وائرس کے کیسز 20 گنا بڑھ گئے ہیں. ادارہ اپنی بنیادی ذمہ داری انجام دینے میں ناکام رہا ہے اور اس لیے اس کا احتساب ہونا چاہیے. چین نے عالمی ادارے صحت کی فنڈنگ روکنے پر امریکی صدر ٹرمپ پر شدید نکتہ چینی کی ہے. خبریں ختم ہوئیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے کرونا کے بارے میں خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے بحران سے نمٹنے کے لیے بہت سی یونیورسٹیاں انفرادی طور پر اور یونیورسٹیوں کے کنسورشیمز کے ذریعے کرونا سے نمٹنے کے لیے مختلف پروجیکٹس پر کام کر رہی ہیں۔ کچھ یونیورسٹیاں وینٹیلیٹرز پر کام کر رہی ہیں، کچھ سینیٹائزیشن کٹس پر کام کر رہی ہیں، کچھ ماسک پر کام کر رہی ہیں، اور کچھ جو آلریڈی اویلیبل دوائیں ہیں ان میں سے کوئی ایسی دوا تلاش کرنے میں مصروف ہیں جو کرونا کے علاج کے لیے کسی حتمی دوا کے طور پر فوری طور پر سامنے آ سکے۔ ایسی یونیورسٹیوں کا ایک کنسورشیم ہے جو کرونا کے لیے کسی حتمی دوا کی تلاش کے لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو استعمال کر رہا ہے۔ اس کے ایک رکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ہیں علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور اور جناح ہسپتال لاہور کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زمان خان، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد زمان خان صاحب، ڈاکٹر زمان صاحب کچھ بتائیے کہ آپ کا یہ کون سا کنسورشیم ہے یونیورسٹیز کا، اور وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ وہ دوائیں تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے، جو کہ کرونا کے علاج کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہو سکے اور فوری طور پر دستیاب بھی ہو سکے۔
بہت شکریہ۔ یہ ہمارا ایک کنسورشیم ہے جس کو مولیکولر بایولوجی کنسورشیم کہتے ہیں، اور اس کا حصہ تین بڑی یونیورسٹیز ہیں: شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور، اور پنجاب یونیورسٹی لاہور سے۔ اور ان یہ مولیکولر بایولوجی کنسورشیم کے ایک حصے کے طور پہ میں بھی اس سے منسلک ہوں۔ اور جب یہ کرونا کی وبا آئی تو اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ ظاہر ہے اس کا ابھی تک کوئی مؤثر علاج موجود نہیں اور ویکسین بھی موجود نہیں، تو کوئی ایسی دوا ڈھونڈی جائے جس کے خلاف مؤثر ہو سکے۔ ہوتا یہ ہے تحقیق کے مطابق کہ جب کوئی نیا کمپاؤنڈ بنایا جاتا ہے تو اس کو ڈیزائن کرنے سے لے کر اس کو عام لوگوں کے استعمال میں آنے تک اس میں کچھ 10 سال لگ جاتے ہیں، اور اس میں ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ اس پہ خرچ آتا ہے۔ تو اس میں ایک اس طرح کی سچویشن میں ہم اتنا انتظار نہیں کر سکے جب تک کہ یہ ایک عالمی وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو اس میں جو سب سے اچھی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوائیں جو پہلے سے موجود ہیں اور ایف ڈی اے جیسے ادارے کی طرف سے وہ کسی کلینیکل استعمال کے لیے اپروو ہو چکی ہیں، ہم ان دواؤں میں سے یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ کیا کوئی ایسی دوا ہے جو کہ اس وائرس کے خلاف بھی مؤثر ہو سکتی ہے۔ تو اس کو ڈھونڈنے کے مختلف طریقے ہیں، جن میں سے اب جو ایک بہت ایڈوانس اور نیا طریقہ ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک قسم ہے جس کو ڈیپ لرننگ کہتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ایف ڈی اے کی 2440 کے قریب ایف ڈی اے اپروو ڈرگس تھیں ان کو لیا، اور ہماری اس ریسرچ کے اندر ایک یہ ملٹی ڈسپلینری ریسرچ ہے جس میں کلینیشین بھی ہیں، جس میں مولیکولر بایولوجسٹ بھی ہیں، اور بائیو انفارمیٹکس کے لوگ بھی ہیں، اور کمپیوٹر سائنسز کے لوگ بھی ہیں۔ تو ہمارے جو کمپیوٹر سائنٹسٹ تھے اور یہ ریسرچرز ہیں جو کہ جرمنی کے اندر پاکستانی لوگ ہیں جو کہ جرمنی میں ہیں، ٹیکنیکل یونیورسٹی آف میونخ میں۔ تو انہوں نے ایک اس مقصد کے لیے میں نے ان سے رابطہ کیا، اور انہوں نے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ماڈل تیار کیا جو کہ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ دوائی کسی پروٹین کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے بائنڈ کرے گی۔ اور پھر اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ فروری کے اندر یہ جو کرونا وائرس ہے اس کا سارا اسٹرکچر جو ہے، جینوم کا اسٹرکچر جو ہے وہ پبلش ہو گیا۔ تو پھر ہم نے اس کو استعمال کرتے ہوئے کرونا وائرس کی کوئی جو 24 کے قریب اہم پروٹینز ہیں ان کو لیا، اور یہ 2400 سے زائد ڈرگز کو لے کے، تو پھر ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کون سی دوا جو ہے وہ اس وائرس کے کس پروٹین کے ساتھ کتنا اچھے طریقے سے میچ کرتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ہم نے کوئی 150 کے قریب دوائیاں پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیں۔ پھر ہم نے اس کو مزید دیکھنے کے لیے ایک اور جس کو ہم ورچوئل اسکریننگ کہتے ہیں یا ٹاکنگ ایکسپیریمنٹس جو سائنٹسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں، اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس پروٹین کے لیول پہ جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ دوائی وہاں پہ کتنے اچھے طریقے سے جا کر لگے گی۔ تو بہرحال اس کے نتیجے میں بھی ہم نے جب اس کو مزید دیکھا تو ان میں سے جو سب سے اچھی दवाएं थी जो कि सबसे अच्छे तरीके से जाकर वहां पे लग रही थी, हमने उनको आइडेंटिफाई किया और ये कोई 8 के करीब दवाएं हैं जिनमें कुछ एंटीवायरल हैं जो कि पहले से हेपेटाइटिस सी के इलाज में इस्तेमाल हो रही हैं, एक आध एंटीबायोटिक है, एक एंटीफंगल है, और ये जो रिजल्ट्स हैं हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 दिन के अंदर हम इसको एक प्री प्रिंट सर्वर जो बायो आर्काइव वगैरह है उन पे रख देंगे, ताकि जितनी हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी है वो इसको देख सके। हम इस पे मजीद तजुर्बात भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी हम ये रिजल्ट्स पहले वहां पे रख देंगे, और जो मजीद तजुर्बात करना चाहते हैं उसके अंदर हम उनको कहते हैं इन विट्रो रिजल्ट्स या वेट लैब एक्सपेरिमेंट्स, जो कि हम लैब के अंदर तजुर्बात करेंगे, और उसके लिए हमने फंडिंग के लिए हायर एजुकेशन कमीशन को अप्लाई किया हुआ है। आई थिंक के जल्दी उसके नतीजे भी आ जाएंगे।
असल में तो बात यह है कि ये फौरी तौर पर ये दवाएं मार्केट में आ जाएं, लोगों के इस्तेमाल में आ जाएं, उसके लिए
जी,
आपने इंटरव्यू से पहले बताया था कि आपने वो दवाएं ली हैं जो FDA से मंजूर शुदा हैं, तो उसकी वजूहात हमारे सुनने वालों को बताइए कि आपने इन दवाओं का इंतखाब क्यों किया और उन दवाओं का इंतखाब क्यों नहीं किया जो कि वैसे ही नई थी या कुछ किसी और सिलसिले में वो सामने आई हुई थी।
इन दवाओं के इंतखाब की वजह ये है, सबसे पहली वजह तो ये है कि FDA अप्रूव जो दवाएं हैं उनके साथ क्लिनिशियंस का साल हर साल का तजुर्बा है कि ये दवाएं महफूज हैं, और अगर ये एक मकसद के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं तो ये दूसरे मकसद के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। दूसरी अहम वजह यह है कि जब कोई अगर कोई नई दवा ढूंढी जाती है तो उसको मार्केट के अंदर आने में और उसकी प्रोडक्शन के अंदर और फिर उसको दूसरे मुल्कों तक पहुंचाने में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं है बल्कि एक आलमी वबा की शक्ल में है, तो हो सकता है उसमें कई कई सारे प्रॉब्लम्स आए। मिसाल के तौर पे आजकल जिस दवाई के ऊपर रेमडेसिविर है, एक एंटीवायरल है जिस पर ट्रायल हो रहा है, और अगर वो FDA से अप्रूव्ड हो जाती है तो भी उसे वक्त लगेगा पूरी दुनिया में बाकी ममालिक में जाने के लिए। तो इस सूरत में हम उन दवाओं का इंतखाब करते हैं जो कि पहले से मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुस्तमिल हैं। मिसाल के तौर पे बहुत चंद एक दवाएं जो हमने ढूंढी हैं उनमें से ऐसी एंटीवायरल दवाएं हैं जो कि हेपेटाइटिस सी के इलाज के अंदर हमारे मुल्क में इस्तेमाल हो रही हैं। तो उसका फायदा ये होगा कि ये दवाएं अगर हम ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि ये दवाएं इस वायरस के खिलाफ मौसर हैं, तो ये दवाएं फौरी तौर पर मुयस्सर भी होंगी ताकि उसका इस्तेमाल शुरू किया जा सके।
तो अब आपने कहा कि आपका ये जो रिसर्च प्रोसेस है कंप्यूटर के मरहले पर तो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से तो मुकम्मल हो चुका है, अब इसकी जो प्रैक्टिकल इसकी जो लेबॉरेटरी में टेस्टिंग होगी वो अब करेंगे आप अगले मरहले में, तो और अगर वो मरहला कुछ इम्कान के कितने कितने अरसे पर मुहित होगा और कब तक ये मार्केट अवेलेबल हो सकेगी दवा अगर ये बन गई और कारामद हुई तो
जी। So, उसके अंदर ये है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि हम अगले 2-3 माह के अंदर इस मरहले को भी जो टेस्टिंग है उसको ये रिजल्ट्स भी हमारे पास आ जाएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। हमारी कोशिश तो ये होगी कि मई के एंड तक ये कुछ रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएं, लेकिन आपको पता है कि जो जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसमें कुछ देर हो भी सकती है, मगर इसके बावजूद हम ये करेंगे जी कि हम इन चूंकि हम ये रिजल्ट्स उससे पहले पब्लिश करके ऑनलाइन रख देंगे सो लोग उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और चूंकि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है और दुनिया में कई ऐसी लेबॉरेटरीज होंगी जो कि हमसे ज्यादा इक्विप्ड और फास्ट हैं, वो उससे फायदा उठा के ये एक ओपन चीज है कि कोई भी उससे फायदा उठा के उनकी लैब में एक्सपेरिमेंट अगर करें तो शायद ये रिजल्ट्स जल्दी भी मुयस्सर आ जाएं। सो अगर ये रिजल्ट्स पहले आ जाते हैं तो फिर इसका फायदा ये है FDA अप्रूव्ड ड्रग के इस्तेमाल का कि हम डायरेक्टली जिसे कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल में जा सकते हैं, सो उसको डायरेक्टली ह्यूमन टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इन दवाओं को।
तो ये आपको इसके क्या हुकूक किसको हासिल होंगे, कौन ये दवाओं को मार्केट में लाएगा, उसका क्या प्रोसेस होगा अगर ये दवा कोई बन जाती है या आप साबित कर देते हैं कि ये सही है तो?
जी उसमें इसे हम कहते हैं रीपर्पजिंग ऑफ ड्रग्स। तो ये दवाई ऐसी नहीं होगी कि जो हमने एक नई दवा बनाई है, बल्कि जो पहले से मौजूद दवाएं हैं हमने ये साबित किया है तहकीक के जरिए से कि ये इस मकसद के लिए भी मुस्तामिल हैं। इनमें से कई दवाएं ऐसी हैं जो कि जिसे कहते हैं पेटेंट फ्री हैं, तो जाहिर है वो तो ओपन फ्रीली अवेलेबल होंगी, और अगर कोई ऐसी दवाएं हैं जो कि पेटेंट वाली हैं तो जाहिर है इस आलमी सूरत हाल में मुझे बहुत उम्मीद है कि वो कंपनियां भी इसमें जो है वो तावुन करेंगी इसको करने के लिए। जो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल जो बनाया है वो हमारा वो पेटेंट होगा। इस मॉडल का फायदा ये होगा कि ना सिर्फ अभी बल्कि आने वाले वक्त में भी अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वबा आती है या फौरी तौर पे किसी इस तरह की टेस्टिंग की जरूरत पेश होती है तो ये जो मॉडल है जो कि कंप्यूटर के लेवल पे किया जा सकता है वो लोगों के लिए अवेलेबल होंगे। सर
बेहद शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद जमान खान, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया जी। ये थे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर और जिन्ना अस्पताल लाहौर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जमान खान। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
और अब वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से हम आपको मालूमात पहुंचाते हैं जुनूबी पंजाब में कोरोना बहरान के दौरान की सूरत हाल के बारे में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी मजलिस आमला के रुकन मोहम्मद अमीन अब्बासी बहावलपुर से। आप जियो न्यूज और द न्यूज अखबार के नुमाइंदे भी हैं। जी अमीन अब्बासी साहब, कुछ बताइए कि इस वक्त जुनूबी पंजाब में जो कोरोना बहरान है उसके दौरान उमूमी क्या सूरत हाल है, लोगों को हेल्थ की जो फैसिलिटीज हैं खासतौर पर जो कोरोना से बचाव के लिए उनको चाहिए वो मिल रही हैं, और जो दूसरे इंतजाम हैं जो हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं उनके खुराक के या राशन के बंदोबस्त के लिए जो घरों में बंद हैं उनकी क्या हालात हैं, वो हमारे सुनने वालों तक पहुंचाइए।
जी ओवरऑल तो इस सूरत हाल को मैं ये कहूंगा कि कोई तसल्ली बख्श नहीं है। बहावलपुर क्योंकि एक पुराना स्टेट रही है और इसका हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 1906 से बहावलपुर बहावल विक्टोरिया अस्पताल के हवाले से, और अब एक नया हॉस्पिटल बना है सिविल हॉस्पिटल जो झांगीवाला रोड पर बनाया गया है, उसमें इंतजाम तो किसी हद तक किए गए हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में जो है वो क्वारंटीन सेंटर भी बनाया गया है ताकि जो बाहर के मरीज आए या ज्यादा अगर कोई सूरत हाल खराब हो तो उनको लोगों को जो भी मरीज हों या जो भी अफराद हैं जिन पे शुबा है उनको वहां पे रखा जाए। ऐसा जो है वो डॉक्टर्स खसूसन जो है इन हॉस्पिटल्स के वो सेटिस्फाइड नहीं, उनको अभी तक जो है वो कोई प्रॉपर पीपीई जो उनका पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है वो नहीं मिल सका। उसके साथ साथ जो है उनके और भी बहुत से कंसर्न है, लोग जो है ना हॉस्पिटल्स में आते हैं बताते नहीं है, उनके पेरेंट्स जो है उनके जो लवाहिकीन है वो बताते तक नहीं है कि इनके कहीं ट्रेवलिंग हिस्ट्री है या किसी ये किसी जो है वो जायरीन से मिले हैं या किसी तबलीगी जमात वाले से मिले हैं या इन्होंने किसी पे विजिट किया है या उनसे मिल के आए हैं। फिर बाद में जब वो टेस्ट जाते हैं वो मुस्बत होते हैं तो उस पर जो है वो पूरे डॉक्टर जो है उनको एक जो है परेशानी का सामना है। इसी तरह देहातों में भी यही सूरत हाल है। अमूमी तौर पर जो है वो सूरत हाल को कोई मैं तसल्ली बख्श नहीं करार दे सकता। इंतजामिया अपने तौर पर कोशिशें कर रही है, टेस्ट किट्स नहीं है, कम लोगों के टेस्ट कम हो रहे हैं, जब टेस्ट ज्यादा होंगे तो पता चलेगा कि इलाके में क्या सूरत हाल है।
देहातों में क्या इस वक्त मंजर है?
देहातों में भी देखिये लॉकडाउन है। देखिये हमारे जो इस जनूबी पंजाब की जो पॉपुलेशन है ना वो 60% जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका उनकी जो है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर। आजकल हार्वेस्टिंग का सीजन पीक पे है गंदम का, लॉकडाउन की सूरत हाल है, लोगों में अभी ابھی تک یہ بھی اویئرنیس نہیں ہے مقامی انتظامیہ نے, خصوصاً دیہاتوں میں لوگوں کو یہ نہیں جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کوئی ایجوکیٹ کیا کہ سوشل ڈسٹینس کس طرح مینٹین رکھنا ہے, کس طرح جو ہے وہ فصل گندم جو ہے کٹائی ہے اس کے دوران اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور فصل کو بھی بچانا ہے. ساتھ ہی جو ایگریکلچرسٹ ہیں وہ بےچارے پریشان ہیں کہ گندم جو ہے وہ تیار کھڑی ہے تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور دیگر کئی مسائل کی وجہ سے وہ اس کو کاٹ نہیں سکتے. ابھی جو حالیہ سیزن گنے کا ختم ہوا ہے ان کی پیمنٹس جو ہے وہ شوگر ملز کے پاس باقی ہیں, ان کی وہ ادائیگیاں نہیں ہو رہی. تو انفیکٹ جو ہے جو اس جنوبی پنجاب کا کی سب سے بڑی آبادی ہے جو زراعت پہ ڈیپینڈنٹ ہے وہ بہت پریشان ہے. اسی طرح شہروں میں جو ڈیلی ویجر ہیں جو مزدور ہیں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں, کنسٹرکشن کا بزنس جو ہے وہ بند ہے. اس طرح کے اور بھی بہت سے مسائل ہیں. جو آپ نے بات کی کہ راشن جو ہے ان غریبوں کو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت تو دے رہے ہیں, اور اب جو ہے وہ تیسرا دن ہے آج کے یہ جو احساس کفالت پروگرام پرائم منسٹر نے شروع کیا ہے اس کی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کا آغاز ہوا ہے. تو بہاول پور ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ تقریباً 1,02,000 لوگوں کی ایک لسٹ آئی ہے جو کہ پرانی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ ہی ان کے ریکارڈ پہ ہی چل رہی ہے. ان کو جو ہے وہ ضلع میں بلا کر خواتین کو جو ہے ان کے پیسے 12,000 روپے فی خاتون جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں. تو شاید اس سے کچھ وقتی طور پر ان کو ریلیف تو حاصل ہو سکے گا, لیکن کوئی اگر یہ لاک ڈاؤن خدا نہ خواستہ یہ اور بڑھ گیا تو اس سے اور علاقے کی صورتحال خصوصاً معاشی صورتحال جو ہے وہ بہت ہی خراب ہو جائے گا.
بہت شکریہ محمد امین عباسی صاحب. آپ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے مرکزی مجلس عاملہ کے رکن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دا نیوز اخبار اور جیو نیوز کے بھی نمائندے ہیں. آپ نے ہمارے سننے والوں تک جنوبی پنجاب کی کرونا بحران کے دوران کی صورتحال پر معلومات پہنچائیں, بہت شکریہ.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کسان بورڈ پاکستان کے مرکزی چیئرمین جام حضور بخش. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کرونا کے اس بحران کے دوران جبکہ ملک لاک ڈاؤن ہے, کسانوں کی کیا صورتحال ہے, کسانوں کے کیا حالات ہیں اور ان کی کیا مشکلات ہیں اور وہ ان مشکلات سے کیسے نمٹ رہے ہیں. السلام علیکم جام حضور بخش صاحب, آپ پورے پاکستان کا یہ کسان بورڈ ہے جس کے کسان بورڈ پاکستان جس کے آپ مرکزی چیئرمین ہیں, بتائیے ہمارے سننے والوں کو کیا کیفیت ہے اس وقت کسانوں کی, وہ کن مشکلات سے اس وقت گزر رہے ہیں؟
دیکھیں جی, اس وقت یہاں پاکستان کی زراعت کے حوالے سے جو ٹائم ہے یہ ہے گندم کی کٹائی کا, اور یہ غذائی اعتبار سے پاکستان کے لیے, زراعت کے لیے بھی اور یہاں مقامی طور پر بھی کسان کے لیے بھی یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ وہ پورے سال کی گندم اپنے خرچے کے لیے, اپنے خاندان کے لیے اور اپنے اخراجات کے لیے وہ یہ گندم جو ہے کر کے رکھتا ہے, اور باقی جو ہے وہ بیچ کر اپنے پھر سال کا گزر بسر بھی کرتا ہے, اور پاکستان کے اس 22 کروڑ عوام کی غذائی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے. اور اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے کسان پاکستان کا وہ پاکستان کی جو ضرورت ہے اس سے زیادہ گندم پیدا کرتا ہے, ہم کسی کے اس حوالے سے کوئی محتاج نہیں ہے. لیکن میں عرض کروں کہ اس وقت جب جو کرونا کا پوری دنیا کے اندر بہت بڑی فضا پھیلی ہوئی ہے, پینس ہے, ہیریسمنٹ ہے, اور دنیا بہت زیادہ پریکاشن پہ گئی ہوئی ہے اور پریکاشن میئر لے رہی ہے, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, مجھے یہ کہنے میں انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کے دیہاتوں میں جب یہ گندم کی کٹائی کا ہے تو یہاں سارا سسٹم اکثر 60% مینوئل ہے, لوگ ہاتھ سے اب بھی گندم کاٹتے ہیں, پھر ہاتھ سے کاٹ کر پھر تھریشنگ ہوتی ہے. تو اس کے اندر لوگ مقصد ہے کہ سوشل ڈسٹینس نہیں رہتا ہے, لوگ کافی تعداد میں اس گندم کی کٹائی کرتے ہیں, مل جل کر کرتے ہیں, مل جل کرنے کے علاوہ کھانا پینا اکٹھے بیٹھ کر کرتے ہیں اور سارے کام جو ہیں وہ اس میں کسی قسم کا سوشل ڈسٹینس نہیں ہوتا ہے. تو مجھے یہ کہنے میں انتہائی دکھ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت دیہاتوں میں کسی قسم کی کوئی اویئرنیس نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے اور کسی قسم کا لوگوں کے اندر کوئی سوشل ڈسٹینس کا کوئی تصور نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی اویئرنیس پیدا کی گئی ہے. میں کیونکہ ذاتی طور پر کاشتکار ہوں اور میں ذاتی طور پر ان سارے ریموٹ ایریاز میں رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں اپنی تنظیم کے حوالے سے بھی اپنے پروفیشن کے حوالے سے بھی. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ اس کو کسی صورت بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں کے پاس جو ہے حکومتی لیول پر یا کسی طریقے سے بھی 1% اویئرنیس ہو. لوگ ویسے ہی زندگی کی ڈگر پر جا رہے ہیں جیسے پہلے تھے اور ان کے معمولات ویسے ہی جا رہے ہیں جیسے تھے. اور جیسے میں نے کہا گندم کی کٹائی ہے تو ان حالات میں ان کو ضروری تھا کہ بتایا جاتا کہ آپ سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے, آپ کو یہ طریقے کرنے ہیں, ہاتھ آپ نے کیسے دھونے ہیں, سینیٹائزر کیسے یوز کرنا ہے. لیکن یہاں پاکستان کے اندر اس قسم کا کوئی لوگوں کو نہ سہولت دی گئی ہے اور نہ ہی ان کو اس قسم کی کوئی اویئرنیس دی گئی ہے. ہاں کسان تنظیمیں جو ہیں وہ لوگوں کو گھر گھر جا کے بتا رہی ہیں ایسا کرنا ہے, اس طریقے سے کرنا ہے یا ویسے کرنا ہے. حکومت کی ساری توجہ شہروں کے اوپر ہے اور شہروں کے اوپر وہ کیے ہوئے ہیں, دیہات اس سے مستثنا ہے. کرونا کے حوالے سے دیہاتوں کو کوئی اویئرنیس نہیں ہے. ٹائم جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ان کو اس ٹائم پہ جب گندم کی کٹائی ہو رہی ہے تو یہ ان کو بتانا چاہیے کہ آپ اس میں سوشل ڈسٹینس رکھیں, گیدرنگ زیادہ نہ ہو اور آپ اس کو جو ہے سمجھیں کہ کرونا وائرس کیا ہے.
اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا ان کا مسئلہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کا ہے, لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو گندم کٹائی ہو رہی ہے وہ مناسب قیمت پر حکومت خرید نہیں رہی, کوئی یہ مسئلہ بھی موجود ہے؟
دیکھیں حکومت جو ہے ایسا کرتی ہے جب گندم زیادہ ہو جائے تو پھر لائنیں لگی ہوتی ہیں گندم کے خریداری مراکز کے اوپر. جہاں گندم حکومت اپنے ٹارگیٹ کے مطابق خریدتی ہے وہاں زیادہ گندم ہو جائے تو پھر وہ من مانی کرتے ہیں, پھر وہ ٹرائیوں کی دو دو پانچ پانچ چھ چھ آٹھ آٹھ کلو میٹر لائنیں ہوتی ہیں, پھر اس میں سے وہ کٹوتی لگاتے ہیں کہ اس کے اندر اتنا کچرا ہے, اتنا مٹی ہے, اتنا یہ ہے, پھر اس کے ویٹ کے اندر اس کو خرابی کرتے ہیں. اور پھر وہ ڈائریکٹ لیتے بھی نہیں ہیں, درمیان میں کوئی بروکر کے تھرو لیتے ہیں یا کوئی ایسا جو ان کا ایجنٹ ہوتا ہے اس کے تھرو لیتے ہیں. یہ تو ہو گئی اس وقت جس وقت گندم زیادہ ہو گئی. اب اس سال جو گندم کا آنے کی توقعات ہیں حکومت کو یہ معلوم ہے کہ گندم اس وقت کم آئے گی, تو اس وقت حکومت نے بین کر دی ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ, کوئی بھی پرائیویٹ لوگ, کوئی چیز جو ہے وہ اس کی خریداری نہیں کر سکتے. اب ان حالات میں جب گندم کی قیمت کو بہتر کسان کو ملنا چاہیے تھا, انہوں نے کسی قسم کی پرائیویٹ خریداری جو ہے منع کر دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ کسان خوش پالیسی ہے کہ جب اس کو اچھا ریٹ ملنے والا ہے, جب وہ اچھا ریٹ حاصل کر سکتا ہے تو انہوں نے ایک ریٹ فکس کر دیا ہے اور وہی ریٹ وہ حکومت کو دے سکتے ہیں, کسی اور کو نہیں دے سکتے ہیں. اور وہ ہے 1400 روپے فی 40 کلو گرام. اب 1400 روپے فی 40 گرام, یہی گندم جو ہے گندم آنے سے پہلے پرائیویٹ سیکٹر جو 2000 روپے تک 1800 روپے تک بیچتا رہا ہے, یہی پرائیویٹ سیکٹر 1800-2000 روپے پہ گندم بیچتا رہا ہے. اور بار بار بحران پیدا ہوا ہے, لوگوں نے اس کو جمع کیا ہے, لوگوں نے اس کو اسٹاک کیا ہے, اور جس طریقے سے اور چیزیں یہاں اسٹاک ہوئی ہیں, چینی وینی ہوئی ہے, ادھر گندم اور آٹے کا بحران بھی ہوا ہے. لیکن حکومت نے ان لوگوں کو نہیں روکا کہ آپ لوگ زیادہ منافع کما رہے ہو, 1400 کے دام پہ گندم خریدی تھی تو 1800 اور 2000 کما رہے ہو, لیکن اب جب گندم کا سیزن آیا ہے تو کسان کے اوپر یہ پابندی ہے کہ وہ 1400 روپے کے اوپر صرف سرکاری گوداموں پہ گندم بیچ سکتا ہے, باہر نہیں بیچ سکتا. تو ہم حکومت کی اس پالیسی جو کسان خوش پالیسی ہے, کسان دشمن پالیسی ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کسان کو آپ آسودہ نہیں کریں گے, اس کی ملک کی جو ہے وہ کسی قسم کی زراعت جو ہے وہ آسودہ نہیں ہوگی. اور خدا نہ کرے پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کنارہ کش ہو جائے تو اس ملک کے اندر بہت ساری چیزوں کی کمی بھی آ سکتی ہے. تو یہ جو اس وقت صورتحال ہے کرونا کے ساتھ ساتھ, یہ بھی ایک بہت بڑی لوگوں کے اوپر مصیبت ہے کہ وہ حکومت کو گندم بیچنے پہ مجبور ہے. حکومت جو ہے ان سے صرف 1400 روپے خرید کر رہی ہے. ہر سال ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہم پنجاب میں ہوتے ہیں اور پنجاب کے اندر جتنے اضلاع گندم پروڈیوسنگ ہے تو ان کے اضلاع کے اندر پروکیورمنٹ سینٹر مرکز خریداری بنا دیتے ہیں اور اس میں آ کے لوگ اپنی گندم جو ہے وہ بیچتے ہیں. تو میرا خیال 170 یا 180 کے قریب جو ہے وہ پرچیز سینٹرز ہیں یا 200 کے قریب پرچیز سینٹرز ہیں, تو ان کے اوپر جو ہے وہ گندم وغیرہ جو ہے وہ آ کے بیچتے ہیں. اس وقت گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے اور گندم کی تھریشنگ ہو رہی ہے اور ابھی انہوں نے باردانہ جس کو کہتے ہیں اس کا بیگ, جیوٹ بیگ وغیرہ جو ہوتے ہیں تاکہ وہ کسان اس میں گندم ڈال کے ان کو دے سکے, یا پولیتھین بیگ ہوتے ہیں وہ دے سکے, وہ انہوں نے تقسیم کر دی ہیں. اور جیسے جیسے کسان کے اوپر گندم آتی جائے گی اس کے پاس, وہ ان جوٹ بیگ میں یا ان پولیتھین بیگ میں ڈال کے ان کے جو پروکیورمنٹ سینٹر ہیں وہ ان کے اوپر پہنچاتا جائے گا اور وہ ان کو ٹوکن دے دیں گے کہ جا کے فلاں بینک سے لے لو. تو یہ سیزن ابھی سٹارٹ ہو چکتا ہے اور یہ تقریباً 40 ڈیز کا ہوگا. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ یہ کوئی 4-5% جو ان کو کوٹا ہے وہ ڈیلی کا کر رہے ہیں, اس میں بھی کسان بہت جمع ہوتا ہے, بہت خجل ہوتا ہے. یہ روزانہ کی بنیاد پر بہتر انداز میں اگر یہ زیادہ سے زیادہ گندم لیں तो ये पीरियड कम भी हो सकता है और जिम्मेदार को फायदा भी हो सकता है कि वो अपनी गंदम जल्दी डिस्पोज ऑफ करें, पैसे करके लेके इनसे अगली फसल काश कर सकता है। तो ये भी है कि ये गंदम जो है ये डेली बुनियाद पर कम से कम ले रहे हैं, जिससे जिम्मेदार जो है वो पैनिक होती है, जिम्मेदार को जो है इस बारे में परेशानी होती है। तो ये सीजन इस वक्त स्टार्ट है गंदम परचेज का पाकिस्तान में।
तो क्या इस कोरोना बहरान के दौरान ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है किसानों को कि वो जो गंदम है वहां तक पहुंचा सके इन मराकिस तक?
देखिए अभी इन्होंने कोई रिलैक्सेशन दी है, कोई दो एक दिन हुए हैं जिसमें इन्होंने जैसे फ्रूट की या होटल्स हैं या मकसद रेस्टोरेंट हैं या और चीजें हैं इनको थोड़ा सा रिलैक्स किया है, ऐसे ही इन्होंने जरात वाली चीजों को भी थोड़ा सा रिलैक्स किया है, जैसे मकसद पेस्टिसाइड की शॉप्स हैं, जैसे जिम्मेदारों के लिए वो कोई बीज बीज की शॉप्स हैं उनको रिलैक्स किया है। अगर इनको जो है गंदम की जो तरसील है या ट्रांसपोर्टेशन है अगर इसको बैन करेंगे तो फिर इसकी कोई किसी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकेगी, मेरा अपना ख्याल है। और ये यकीनन इसमें रिलैक्सेशन करेंगे क्योंकि फिर ये जाहिर प्रोक्योरमेंट हो नहीं सकती, गंदम खरीद नहीं सकते और ये हुकूमत को करनी पड़ेगी। और हुकूमत की क्योंकि ये अपनी जरूरत है कि उसने अपने गोदामों में गंदम को जमा करना है और किसान से खरीदना है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ये इसको अलाउड हो जाएगी।
बहुत शुक्रिया जाम हुजूर बख्श साहब, आप किसान बोर्ड पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन हैं और आपने बड़ी तफसील से बताया कि कोरोना बहरान के दौरान इस वक्त पाकिस्तान में किसानों की क्या सूरत हाल है, खासतौर पर आपके एरिया में जो बहावलपुर का एरिया है और पूरे पाकिस्तान के एरिया की आपने जनरली मालूमात फराहम की। बहुत शुक्रिया।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
जनूबी पंजाब में जो काश्तकार हैं इस वक्त उनकी क्या सूरत हाल है, इस बारे में तो आपको हमने मालूमात पहुंचाई, जहां मसूर बख्श ने इस पर गुफ्तगू की। और अब हम बात करेंगे डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहावलपुर से, जमशेद सिंधु से, जो कि फील्ड में इस वक्त मौजूद हैं, और उनसे हम पूछते हैं कि इस वक्त जनूबी पंजाब के खासतौर पर बहावलपुर डिवीजन के जो काश्तकार हैं उनके लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है और क्या वो बातें जो जाम हुजूर बख्श ने बताई उनमें उनके बारे में वो कुछ कहना चाहेंगे कि अब इन इतराजात की रोशनी में वो किसानों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। तो आइए जमशेद सिंधु से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमशेद सिंधु साहब।
जी मैम, वालेकुम अस्सलाम।
जमशेद सिंधु साहब, कुछ बताइए कि आपका जो डिपार्टमेंट है काश्तकारों के लिए जो इस वक्त कोरोना बहरान के दौरान कई मसाइल का शिकार हैं, क्या कुछ कर रहा है?
जी जी, तो मैम इस सिलसिले में ये कि आज से 3 हफ्ते पहले सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने हमें डायरेक्शंस दी थी, उन पे हम अवे कर रहे हैं। हमने पहले तो लिटरेचर छपवाया जी, लिटरेचर की प्रिंटिंग करवाई है, उस पर ना तमाम जो हमारी हार्वेस्टिंग है उसकी टेक्नोलॉजी है और उसके साथ उसके कोरोना के हवाले से जो उसके हिफाजती इकदाम है ना वो है सर उसमें लिखे हुए सारे तरतीब से,
ठीक
लिटरेचर है। सेकंड हमने किया मैम, हमारे पास चूंकि फील्ड टीम होती है, फील्ड असिस्टेंट होता है हमारा, फ्रंट वर्कर जो होता है वो होता है एक यूनियन काउंसिल लेवल पे, उसे हमने टास्क दिया है कि वो विलेज में जाते, क्योंकि अब तो वो अकेला सफर करता है, उसके पास मोटरसाइकिल होता है, उधर वो अनाउंसमेंट करता है, सेम टेक्नोलॉजी जो हमने उसे प्रिंट करवा के दिया है ना, सेम मैसेज वो मसाजिद में मौलवी साहब के थ्रू, कि उसमें हम फार्मर्स को कह रहे हैं कि आप सुबह फजर की नमाज के बाद निकले, साफ कपड़े पहने, हाथ धो के निकले, मुंह धोए, अलहदा अलहदा काम करें, अलहदा अलहदा खेतों में काम करें, आपने काम के दौरान खाना पीना नहीं है, अगर पानी पीना है तो आपने गर्म पानी इस्तेमाल करना है, खाने से पहले आपने दोबारा हाथ धोने हैं, ये तमाम जो बेसिक चीजें हैं ये हम अनाउंसमेंट करते हैं। उसके बाद हमारा उससे बड़ा सेगमेंट है एग्रीकल्चर ऑफिसर, उसके पास गाड़ी होती है, हमारे पास डिवीजन में 60 से ज्यादा व्हीकल्स हैं जिन पे हमने स्पीकर्स जो लगा रखे हैं लाउड स्पीकर्स, उन पे भी हम रेगुलरली सफर भी करते हैं और वो अनाउंसमेंट करते हैं जहाँ हार्वेस्टिंग हो रही होती है, और स्पेशली हम जो नोटेबल लोग हैं, नंबरदार हो गए या इलाके के जो बड़े हैं उनको हमने ऑनबोर्ड किया हुआ है, और ये तो हम प्रैक्टिकली फील्ड में करते हैं। दूसरा हमने ये तमाम जो हमारी अपनी कंपेन है इसका हमने वॉइस मैसेज बना के जितने व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे जिम्मेदारों के हमने उन्हें मैसेज दिया हुआ है, उसके अलावा हमने ये तमाम मैसेज जो है वो अपने फेसबुक पे भी तमाम लोग राइट फ्रॉम फील्ड असिस्टेंट अप टू डायरेक्टर तमाम लोगों ने अपने वॉइस पे रिकॉर्डिंग करके वो उस पे फेसबुक पे भी दिया हुआ है ताकि मैक्सिमम लोगों को अवेयरनेस हो सके और होपफुली मैसेज हमारा जा भी रहा है और लोग उस पे अमल भी कर रहे हैं।
लेकिन जमशेद सिंधु साहब, हमने अभी कुछ देर पहले बात की कुछ माहरीन से और कुछ अहदेदार जो काश्तकारों के लिए काम करते हैं, उन्होंने ये
जी जी
हमें
मैम
बताया है कि बहुत सारे इलाकों में जहाँ की हार्वेस्टिंग शुरू है, खासतौर पर बहावलपुर के इलाके में भी, किसानों को अभी कुछ नहीं पता कि ये कोरोना बहरान से कैसे बच रहे हैं और क्या उनको तदबीरें अख्तियार करनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि आपने
नहीं,
सब जगह
मेरी तो मैम कल जहाँ मजदूर भाई साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने मुझे खुद मैसेज पे देखा, फेसबुक हमारी देख के उन्होंने मुझे रिकमेंड किया है कि आपने ये जो मैसेज है बड़ा कंप्लीट मैसेज है आपका।
अच्छा
इस तरह मैं देखे मैम, एक्चुअली ये ना कि हमारा स्टाफ देखे, हम 300 के करीब लोग फंस कर काम कर रहे हैं, तो आबादी तो लाखों में है ना, मिलियंस में है। इवन देन हम अपने पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक तो दूसरा ये था मैम, ये बहुत ज्यादा इसमें सोशल डिस्टेंस वैसे भी मेंटेन रहता है इसमें हार्वेस्टिंग के दौरान, और लेदर लेदर 3, 5, 5, 6, 6 फुट के पे बैठ के लोग जो हाथ से भी कटाई करते हैं ना, उनका भी इस तरह डिस्टेंस रह जाता है कि वैसे कटाई के दौरान भी वो 5-6 फुट के नेचुरली भी उनका स्टाइल यही होता है हार्वेस्टिंग का।
लेकिन
और अगर ट्रैक्टर से कर रहे हैं, रीपर से कर रहे हैं, तो उसमें अकेला बंदा काम कर रहा होता है, हार्वेस्टर से करता है तो वो अकेला कर रहा होता है। इसमें सिर्फ एक जगह पे थोड़ा सा रश आता है, वो होता है थ्रेशिंग, उसकी उसमें हम फोकस कर रहे हैं कि जहाँ थ्रेशर लगा हुआ है हम उसमें जाके उनको ज्यादा फोकस करें।
अच्छा, लेकिन वो लोग, उनको ये भी नहीं पता कि इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खाना उनके तो कल्चर में शामिल है कि जब वो हार्वेस्टिंग कर चुके हैं तो इकट्ठे बैठ।
यही देखे, यही तो हम अवेयरनेस दे रहे हैं ना मैम उन लोगों,
अच्छा
यही अवेयरनेस तो दे रहे हैं।
तो
ये दे रहे हैं, ये देखिए जो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे ये भी बहुत सारा ना देहातों में भी लोग ये इस्तेमाल करते हैं। इससे भी ज्यादा जो हमारा ज्यादा जिसका इम्पेक्ट आ रहा है वो है जो हम मसाजिद में अनाउंसमेंट करते हैं ना हर विलेज में जाके, वो तो तमाम लोग सुनते हैं ना जी।
अच्छा, तो कुछ आपको अंदाजा कि आपने अब तक कितने विलेजेस कवर कर लिए हैं और कितने हैं जहां तक आपका मैसेज अभी नहीं
हमारे
पहुंचा?
हमारे पास मैम, हमारे पास है मोर देन 2700 विलेजेस ना डिवीजन में, और अब तक कोई ऐसा विलेज नहीं होगा जहां ये हमने अनाउंसमेंट नहीं की।
अच्छा, तो इसके अलावा कुछ आप ये बता सकेंगे कि वहां पर कोई मरीज पाया गया या उनकी कोई टेस्टिंग का सिलसिला वहां पर देहातों
नहीं
में?
मैम, अभी तक अल्लाह का बड़ा एहसान है कि देहातों में इस तरह का अभी तक हमें कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं आई कि कोई बंदा है इसमें उस पे कोई बुरा असर हुआ है या कोई कोरोना से वो मशकूक है, इस तरह का अभी तक हमारे यहाँ कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती।
अच्छा जमशेद सिंह साहब, ये आप बता रहे हैं कि हार्वेस्टिंग है, तो क्या हार्वेस्टिंग के बाद इन किसानों को अपनी जो जो गल्ला है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बंदोबस्त मौजूद है या उसको बेचने के लिए उनको मुनासिब इंतजाम का भी सिलसिला जारी है?
इसमें पंजाब गवर्नमेंट ने मैम, वैसे फेडरल गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया हुआ है, ये जो पहले रश लगता था जिम्मेदारों का ना वो उन्होंने ओपन कर दिया है। अब वो जो मिडिल मैन है ना वो खरीदारी कर रहे हैं, जहाँ हमारे इतने 101 बंदे ने जाके काम करना है तो वहां एक मिडिल मैन काम कर लेता है उतना, इसलिए वो उधर भी हमारे जो स्टोरेज है जहाँ पे हमने प्रोक्योरमेंट सेंटर्स बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, वहां पे भी अब रश नहीं है।
लेकिन ये भी एतराज किया जा रहा है कि इस वक्त जबकि किसान बहुत बुरी हालत में है और उसकी जो जो गंदम की वो कटाई कर रहा है उसके लिए लाजमी उसके लिए मिडल मैन डाल दिया गया है, तो जो मिडल मैन है वो अपनी मर्जी से उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनको कम कीमत पर उनसे खरीद कर गवर्नमेंट को दे रहा है, वो बताइए कि इस वक्त किसानों को क्या? जी जी
मैं समझ गया आपको। वैसे मैम गवर्नमेंट का रेट है 1400, ठीक है, और इस टाइम फील्ड में 1300 प्लस पे चल रहा है रेट, 1330-40-50 के दरमियान। बाकी तो मैडम उसके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस भी होते हैं ना, अगर जिम्मेदार खुद लेके जाता है ना सेंटर पे तो उसके भी उसे भी तो वो एक्सपेंसेस 50 रुपीज के करीब भी पड़ जाएंगे कि उसने बार देना बार दाना लेना जैसे पिछले सालों में होता था। अब ये जो ओपन कॉम्पिटिशन हुआ है इससे रेट हेल्दी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला।
लेकिन कहा यह जा रहा है जो इतराज कर रहे हैं कि गरीब किसानों को इस वक्त मौका था कि उनकी गंदम जितनी भी हुई थी वो उसे अच्छी कीमत पर बेच सकते थे पहले।
मैं,
जब
मैं गारंटी कर रहा हूँ कि इस सिस्टम में आम फार्मर को भी अच्छा रेट मिलेगा पिछले सालों के नस्बत,
क्योंकि इस दफा गंदम कम पिछले साल की नस्बत कम पैदा हुई है, और जब कम पैदा हुई
नहीं,
है
नहीं, ये अगर आपको किसी ने बताया तो गलत है, इस साल इंशाल्लाह हमारी पैदावार पिछले साल की नस्बत बहुत बेहतर है।
तो आप समझते हैं कि इस साल जो किसान है पिछले साल की नस्बत अपने गंदम से ज्यादा पैसा कमाएगा भेजिएगा।
इंशाल्लाह ताला 100% कंफर्म है मैम, 100%। जो मैं कह रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि हमारी पैदावार जो है फी एकड़ पिछले साल से बेहतर है और रेट भी इंशाल्लाह ताला अब ठीक है।
तो आप समझते हैं कि इस वक्त कोरोना बहरान के दौरान जो किसानों की जो सरगर्मियां हैं वो रूटीन में चल रही हैं, उनको कोई मसला पेश नहीं आ रहा?
अब नहीं इंशाल्लाह ताला मैम, एक तो वैसे भी वो रेजिस्टेंट लोग होते हैं, ये हमारी रोजी होती है पूरे साल की, इसमें हम लोग फार्मर लोग जो है वो बहुत सीरियसली इन्वॉल्व होते हैं और आजकल चूंकि और तो कोई बिजनेस नहीं चल रहे इसलिए हमारे पास लेबर भी जिम्मेदार के पास ज्यादा अवेलेबल है, हार्वेस्टिंग बड़ी स्पीड से चल रही है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और इंशाल्लाह ताला पैदावार तो मैंने कंफर्म कर रहा हूँ आपको, हम काफी दिन से इंटरव्यू कर रहे हैं लोगों के, अभी पैदावार कितनी आ रही है, पिछले साल से बहुत बेहतर पैदावार आ रही है हमारी और रेट भी मार्केट में मुनासिब है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जमशेद सिंधु साहब, बहुत
शुक्रिया,
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, जी ये थे डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहावलपुर जनाब जमशेद सिंधु, जो बता रहे थे कि जनूबी पंजाब खासतौर पर बहावलपुर के इलाके में, बहावलपुर डीएन के इलाके में जो काश्तकार हैं उनके मसाइल को हुकूमत किस तरह हल करने की कोशिश कर रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील, हमारा ये प्रोग्राम अभी जारी है, सुनते रहिए और एक छोटा सा ब्रेक।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन, हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से कोरोना बहरान के बारे में खुसूसी प्रोग्राम, मैं हूँ यास्मीन जमील। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सी फलाही तंजीमें घरों में बंद लोगों की मदद के लिए सामने आ रही हैं और उनके घरों में राशन पहुंचाने में और उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाने में मदद कर रही हैं और इसमें नौजवानों की तंजीमें भी बहुत नुमायाँ नज़र आती हैं। ऐसी ही एक तंजीम है यूथ पार्लियामेंट, पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट, जिसके सदर हैं मोहम्मद अबू बकर, जो लाहौर से इस वक्त टेलीफोन पर हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उनकी तंजीम इस वक्त क्या कुछ कर रही है अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद के लिए और पाकिस्तान भर में। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर साहब।
वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी हियर।
बहुत शुक्रिया अबू बकर, बताइए कि आपकी यूथ पार्लियामेंट जो है वो इस वक्त क्या कुछ कर रही है लोगों की मदद के लिए?
मैम जिस तरह के एक्चुअली हमारी ये डोमेन नहीं है कि स्पेसिफिकली हम राशन ड्राइव्स और इस चीज पे काम करें, लेकिन जब कोरोना ने पाकिस्तान को हिट किया तो हमने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इसके ऊपर प्रॉपर एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया जिसके अंदर हमने डिफरेंट चीजों के ऊपर काम किया। उसमें सबसे पहली चीज तो ये कि हमारे पास जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट का, उसमें हमने कुछ डॉक्टर्स पे मुश्तमिल सबसे पहले टेलीमेडिसिन सर्विसेज का आगाज किया और लोगों को घर बैठे हम टेलीमेडिसिन सर्विसेज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे थे। और सेकंड स्टेप में हमने हैंड सैनिटाइजर और मास्क, चूंकि जैसे पूरी दुनिया में ये एक वायरस जो है वो फैल चुका था तो बहुत ज्यादा तादाद में ये चीजें यूज होना लगी और इसकी शॉर्टेज होगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी बंद होगी, तो हमने हैंड सैनिटाइजर और मास्क जो है वो अब तक हम 10,000 प्लस जो है वो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस फोर्स और आर्मी के जवानों के अंदर उनकी जगह पे जाके हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड फेज में हमने राशन ड्राइव करना शुरू की और डिफरेंट सिटीज में, ना सिर्फ लाहौर में, पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज में जिसमें लाहौर भी इंक्लूड है, कराची है, हैदराबाद है, टोबा टैक्सिंग है, शेखुपुरा है, इसके अलावा भी बहुत सारी सिटीज हैं जहाँ पे पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के रजाकार जो है वो लोगों को घर घर जाके फैमिलीज को आइडेंटिफाई करके बगैर किसी मजहब की तफरीक के, हमने किसी से किसी का मजहब नहीं पूछा, किसी से किसी का फिरका नहीं पूछा, किसी से कुछ और चीज नहीं पूछी, जो जरूरतमंद है उसको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हम उनके घर जाके राशन प्रोवाइड कर रहे हैं और अब तक हम 5,000 फैमिलीज को सर्व कर चुके हैं इस तरह से। और अब हमारा प्लान ये है कि हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो घरों में मैसूर हैं और वो कुछ कर नहीं सकते, तो उनके लिए हेल्दी एक्टिविटी ये है कि हम ऑनलाइन कुछ कोर्सेज का आगाज करने जा रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होंगे, और इसके अलावा जो है वो मेंटल स्ट्रेस के ऊपर और स्टिग्मा के ऊपर जो है वो हम डिफरेंट ऑनलाइन सेशंस का आगाज कर रहे हैं। और जैसा कि पाकिस्तान में ज्यादातर आबादी जो है वो मुस्लिम्स पर बेस्ड है, तो आगे रमजान का महीना स्टार्ट हो रहा है कुछ 10-1 दिनों में, तो जिस तरह से रमजान का आगाज होगा तो हम दोबारा से वो राशन का पैकेज शुरू करेंगे और रमजान पूरा ये सिलसिला चलता रहेगा और हम लोगों के घरों तक जो है वो खाने पीने की अशिया वो पहुंचाते रहेंगे।
तो आम दिनों में माशाल्लाह बहुत काम कर रही हैं, और आपके कितने अरकान हैं जो और वॉलंटियर्स हैं जो आपके साथ इस वक्त काम कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं?
जो हमारी वैसे तो जो है वो 10,000 के करीब वॉलेंटियर्स हैं जो डिफरेंट सिटीज के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमने जो है वो 1,000 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक फोर्स बनाई हुई है जिनको हमने प्रॉपर पहले तो ट्रेन किया है, और उसके बाद वो फील्ड के अंदर जाते हैं और प्रॉपर एसओपी को फॉलो करते हुए वो सारा ये राशन की तरसील का जो सिलसिला है वो डोर टू डोर जाके जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी तरह जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, सबसे जरूरी चीज ये है मैम, लाहौर के अंदर तो बहुत सारे लोग रीच आउट कर रहे हैं और काफी ज्यादा कम्युनिटी जो है वो इंटरनेट एक्सेस में है, लेकिन आप जिस तरह हम काम कर रहे हैं नवाही इलाकों में, बहावलपुर के नवाही इलाके, साउथ पंजाब में, रहीम यार खान में, खानपुर में, इन इलाकों में इंटरनेट एक्सेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि कोरोना नाम की भी कोई वबा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में हो चुकी है, तो उन इलाकों में जाके अवेयरनेस देना ये एक बहुत बड़ा जो है वो मुश्किल काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रजाकार जो हैं, हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो निकल रहे हैं और उनके घरों तक जा रहे हैं और उनको प्रॉपर अवेयरनेस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं उन इलाकों।
तो कैसे आप उनको इस वक्त मुनज़्ज़म कर रहे हैं, वो तो जगह जगह मौजूद हैं, तो किस तरीके से आप इन 1,000 लोगों को, और ज्यादातर किन शहरों पर ये सेंटर्ड हैं जिनको आप मरबूत करते हैं और ये एक्टिविटीज कर रहे हैं?
मैम पूरे पाकिस्तान के लिए देखा जाए तो 1,000 लोगों की जो तादाद है वो जो है वो काफी कम है, तो लेकिन हमारे ज्यादातर जो वॉलंटियर्स जो हैं वो इस वक्त 100 से 120 के दरमियान वो लाहौर में मौजूद है। लाहौर हमारे ऑफिस में हम इस तरह से करते हैं कि जो भी हमारी चीज आ रही है वो पहले ऑफिस में सेंटर्ड होगी, उसकी पैकिंग जो है वो प्रॉपर हम फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करके और प्रॉपर उसकी पैकिंग करते हैं, और बजाय इसके कि लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करके बुला के और सबको राशन दिया जाए, हम ये काम नहीं करते, हम उनकी जगह को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर मैपिंग करके हमारी जो है वो 3 से 4 मेंबर्स पे मुश्तमिल जो टीम है वो उन इलाकों में जाके उनको डोर टू डोर जो है वो ये चीज प्रोवाइड करती है और ये सहूलियत उनको डोर टू डोर मिलती है।
तो फंडिंग का आप कहाँ से फंड्स ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि फ्री पहुंचाते हैं आप लोगों तक?
बिल्कुल मैम, फंडिंग जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं और पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो अभी तक हमारे पास जितनी भी फंडिंग आई है वो हमारे मेंबर्स की जनरेट की हुई फंडिंग है, हमने किसी फंडिंग एजेंसी से या किसी भी और इदारे से फंडिंग नहीं ली, हमारे अपने बच्चे फंड जनरेट करते हैं या उनके फैमिली मेंबर्स से अगर वो सपोर्ट करना चाहें, कोई फ्रेंड सर्कल्स में सपोर्ट करना चाहे तो वहां से, लेकिन एज सच किसी भी फंडिंग एजेंसी से हमने कोई फंड नहीं लिया और हम अपने फंड जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत खुद जनरेट कर रहे हैं।
तो ऐसा भी हुआ अबू बकर ये कि आपके जो वॉलंटियर्स तकसीम कर रहे हैं राशन वगैरह, कहीं उनको तो कोई मुश्किल पेश नहीं आई या उनमें से तो कोई कोरोना का मुब्तला नहीं हो गया मर्ज में?
मैम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम प्रॉपर एसओपीज को पहले फॉलो कर रहे हैं और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई भी किसी किस्म की जो है वो रिपोर्ट नहीं है, प्रॉपर जो है वो कंटिन्यूसली हाथों को धोना और प्रोटेक्टिव किट्स का इस्तेमाल करना, इवन अब तो हमने अपने वॉलंटियर्स को जो प्रोटेक्टिव सूट्स हैं वो भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं जो फील्ड में जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसी कोई भी चीज नहीं है।
कोई ऐसी खास चीज जो आपके मुशाहदे में आई हो राशन की तकसीम के वक्त, जो आप चाहें कि लोगों को बताएं कि ऐसा ना करें, या कोई ऐसी बेहतियाती हो रही है जो जिससे बचना चाहिए लोगों को?
मैम बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल है और मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा मौका है मेरे पास कि मैं ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात पहुंचा सकूं। हमें कई लोग ऐसे भी मिले हैं जिनके पास जो है वो 2 से 3 दफा राशन पहले से पहुंचा हुआ है और उन्होंने हमने कहा कि हमें राशन की जरूरत नहीं है, आप किसी और जरूरतमंद को राशन पहुंचा दें, क्योंकि आप ये तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि वो बंदा नीडी है या नहीं है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सके कि उसको कोई जो है वो पहले से राशन मिला है या नहीं मिला। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें ऑन बोर्ड लें और जो डाटा है उसको एक सेंट्रल डाटा बना लें ताकि पता चलता रहे, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है, कुछ पता नहीं है कब तक प्रोलॉन्ग होगी कब तक नहीं। तो एक सेंट्रल डाटा जब हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा उससे हम ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लिस्टिंग कर सकते हैं कि लोगों को कितना राशन पहुंच चुका है, इनको और जरूरत है या नहीं है। और इसी तरह अगर गवर्नमेंट इसमें हमारा साथ दे दे तो जिन लोगों को जो गवर्नमेंट की स्कीम में से 12,000 रुपए मिल चुके हैं अगर उनको भी आइडेंटिफाई किया जा सके तो और ज्यादा आसानी हो जाएगी, ताकि जो बिल्कुल सबसे ज्यादा मुस्तहिक अफराद हैं उन तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा जा सके। और दूसरा थोड़ी सी एक जो सेकेंड नंबर पे चीज देखने को आती है कि कुछ लोग भी अभी तक इसको सीरियसली नहीं ले रहे। लोग बगैर मास्क के हमने घरों से बाहर निकलते देखे हैं, लॉकडाउन में वो सख्ती नहीं है जो सख्ती होनी चाहिए, साथ साथ आठ आठ लोग बगैर मास्क के एक जगह पे खड़े हैं और डिस्टेंसिंग को जो है वो फॉलो अप नहीं किया जा रहा है SOPs के ऊपर जो है, और कई इलाकों में जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ये चीज देखने में ही। लेकिन अभी भी अंडर प्रिविलेज्ड इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इस चीज के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है और हमें उन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है।
बहुत शुक्रिया मोहम्मद अबू बकर, पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के आप सदर हैं और आप यकीनन इस वक्त अपने घर में हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं जहां बहुत सारे माशाल्लाह बच्चे भी हैं। तो
मैं बिल्कुल मैम एक स्लम एरिया के अंदर मौजूद हूं और यहां पे बहुत सारे बच्चे जो है वो हम लोग यहां पे आए हुए हैं और यही चेक कर रहे हैं कि ये जो स्लम्स एरिया के बच्चे हैं यहां पे हम जो है वो क्योंकि यहाँ पे पहले इनको कोई ना कोई लोग खाना दे देता था, कोई इधर एक दस्तरखान लगता था जहाँ से ये बच्चे खाना खा लेते थे, इनके घर वाले खाना खा लेते। तो आज हम यही असेस करने आए हैं अब हम इनको कुक्ड फूड कैसे पहुंचा सकते हैं।
तो ये सारे बच्चे जो बाहर गलियों में इस वक्त मौजूद हैं तो इनको कोई रोकने वाला इस वक्त नहीं है कि ये घरों में जाएं?
मैम ये कच्ची आबादी है और यहाँ पे वो टेंट्स की सूरत में और कुछ कच्चे मकानों की सूरत में बच्चे जो हैं वो रहते हैं, तो कोई जाहिर है रोकने वाला नहीं है।
आबादी का नाम क्या है इसकी?
ये बिल्कुल सब्जाजार के अंदर जो है ये कच्ची बस्ती एक मौजूद है और लाहौर का इलाका है सब्जाजार और स्लम्स एरिया है ये सब्जाजार के अंदर। यहाँ पे झुग्गियां वगैरह जो है वो मौजूद है। तो
अच्छा, जो है तो इसका कोई नाम नहीं है इस बस्ती का?
नहीं मतलब ऐसे बस्ती का नाम नहीं है, इसको झुग्गियों के नाम से पहचाना जाता है। सब्जाजार लाहौर के अंदर जो है वो एक टाउन है सब्जाजार स्कीम और ये उसके अंदर जो है वो एक जगह के ऊपर जो है वो मौजूद है।
तो आपने क्या देखा कि इन लोगों को अब बिल्कुल खाना नहीं मिल रहा इसी बस्ती को?
ये बस्ती को बिल्कुल भी जो है ना वो खाना नहीं मिल रहा क्योंकि ये नोमैडिक पीपल है, नोमैड्स है, खाना बदोश लोग हैं, इनका कोई एज सच वे ऑफ अर्निंग जो है वो नहीं है। और इसी तरीके से किसी कोई ना कोई जो है वो इन तक पहुंच जाता था और ये दस्तरखान वगैरह से खाना खा लेते थे और इन तक फूड पहुंच जाता था। तो अब ये सिलसिला जो है वो काफी हद तक कम है तो इसलिए आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं ताकि इनको जो है यहाँ पे हम असेसमेंट कर सके कि हम कैसे मैकेनिज्म डेवलप कर सकते।
तो कोई ऐसा शख्स जो यहाँ मौजूद है जिससे हम बात कर सकें कि इनके क्या मसाइल हैं इस झुग्गी के, इस बस्ती के, कोई है बात कर सकता है?
मैं देख सकता हूँ और एक मिनट मुझे देख लेने दें क्योंकि इधर किसी ने भी कोई वो किट वगैरह जो है या मास्क तक भी नहीं पहना हुआ तो हम अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन लेट मी चेक अगर किसी से बात हो सकती।
लेकिन आप अपनी हिफाजत कीजिए, अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो फिर ना जाइए।
नहीं जस्ट अ मिनट भाई, दो मिनट बात करेंगे, एक मिनट आपसे बात कर रहा हूँ। मैम वो यही हालत है कि इस वक्त जो है ना वो कोई भी मतलब मैंने आपको बताया ये इलिटरेट पीपल है लेकिन वो ये कहने रहे हैं जब यहाँ पे कोई ना कोई जो है वो मैकेनिज्म डेवलप करने के बाद जब हम दोबारा यहाँ पे आएंगे तो उस वक्त इनके व्यूज लिए जा सकते हैं। तो आई विल डेफिनेटली जो है वो मैं शेयर कर सकता हूँ।
बहुत शुक्रिया मोहम्मद अबू बकर, पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट के आप सदर हैं और इस वक्त मसरूफ हैं उन सरगर्मियों में जो इस वक्त बहुत जरूरत है, खासतौर पर जो कच्ची आबादियां हैं या जो गरीब बस्तियां हैं जहां पर खाने का कोई बंदोबस्त नहीं है, जहां राशन का इस वक्त कोई बंदोबस्त नहीं है, उनके लिए आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको इस कोरोना बहरान के दौरान एक तो उन्हें आगाह करें कि किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और दूसरे उनकी जो जरूरियात की चीज़ें हैं रोजमर्रा की जरूरियात की जिंदगी की जो चीज़ें हैं कम अज़ कम वो उन तक पहुँच सकें, खासतौर पर खाना। बहुत शुक्रिया, हमारी दुआ कि आप अपने मकसद में कामयाब रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बुरानी हालत में मदद कर सकें। बहुत शुक्रिया।
थैंक यू।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
और अब अमेरिका में कोरोना के हवाले से एक रिपोर्ट मुदस्सर मंजर की जबानी।
कैलिफोर्निया में कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद देखकर लॉकडाउन का फौरी फैसला इस वबा से ज्यादातर लोगों को महफूज रखने में मददगार साबित हुआ है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक कैलिफोर्निया कोविड 19 के मरीजों के लिहाज से अमरीका की रियासतों में चौथे नंबर पर है। न्यूयॉर्क अब भी पहले नंबर पर है। अमरीका की 50 रियासतों में आबादी के लिहाज से कैलिफोर्निया सबसे बड़ी रियासत है। 1968 में इसे गोल्डन स्टेट का नाम दिया गया। हर मौसम बहार इसके तूल अरज में खिलने वाले पोपी के गोल्डन फूल और इसका गोल्डन गेट ब्रिज सब इसके साहिलों पर गुरूब होते सूरज की नारंजी किरणों में नहा जाते हैं। 1848 में यहाँ सोना दरियाफ्त हुआ और अब ये अमरीका का साइंसी और सकाफती मरकज भी है। इसकी सिलिकॉन वैली टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब बरपा कर रही है और हॉलीवुड स्टूडियोज फिल्मी दुनिया में सानी नहीं रखते। मार्च के महीने में इस रियासत में कोरोना वायरस के तेजी से फैलने की तशवीशनाक खबरें आ रही थी। इसके साहिल पर डायमंड प्रिंसेस नामी क्रूज शिप लंगर अंदाज हो चुका था और उस वक्त उसमें कोविड 19 के 21 मरीज थे। सूरत हाल काबू से बाहर होती मगर कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने इससे पहले ही रियासत भर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। इंतहाई जरूरी अमले के सिवा बाकी सब लोग घरों में महसूर हो गए और यूं कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में मदद मिली। कैलिफोर्निया में कोविड टीम और स्टेट हेल्थ बोर्ड के रुकन पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर आसिफ महमूद कहते हैं कि कैलिफोर्निया की इंतजामिया ने कोरोना वायरस को रोकने के जो इकदाम किए उनसे बहुत फायदा हुआ। वो कहते हैं कि न सिर्फ गवर्नर ने जल्द इकदाम किए बल्कि जो मकामी मेयर थे उन्होंने भी फौरी एक्शन लिया। इनमें सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और दीगर बड़े शहरों के मेयर शामिल हैं और फिर उन्हें रियासत की मदद भी हासिल थी और यही वजह है कि इस वक्त कैलिफोर्निया इस काबिल है कि उसने 500 वेंटिलेटर न्यूयॉर्क को दिए हैं और कोलोराडो और विस्कॉन्सिन को भी वेंटिलेटर दिए हैं और फिर भी इतने वेंटिलेटर बच रहे हैं कि मरीजों की तादाद में इजाफा हो तो इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
कैलिफोर्निया में बड़ा मुश्किल डिसीजन हमारा एक ही एंगल था कि इस चीज का इलाज कोई नहीं है और जब लोग बीमार हो जाते हैं तो डिजीज अपना कोर्स लेती है, तो उसकी सबसे जरूरी चीज प्रिवेंशन है और उसकी प्रिवेंशन का तरीका यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, आप लोगों का मेल मिलाप हर तरह पे हर लेवल पे कम कर दें।
कैलिफोर्निया का मौसम अक्सर मुतदिल रहता है। मौसम में गर्मा खुश्क और गर्म और सर्मा में बाज इलाकों में बर्फबारी भी हो जाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अब तक ये ख्याल किया जा रहा था कि मौसम गर्म होगा तो कोरोना वायरस की आलमी वबा के असरात भी कम हो जाएंगे, मगर डॉक्टर आसिफ महमूद कहते हैं कि ये महज ख्याल है कि फ्लू की तरह ये वायरस मौसम गर्म होते ही खत्म हो जाएगा।
क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ्लू का एक्सपीरियंस है, तो फ्लू जो है वो आमतौर पर फॉल में आता है जब सर्दी शुरू होती है और जब स्प्रिंग से पहले खत्म हो जाता है जबकि गर्मी शुरू होती है। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि टेम्परेचर ऊपर जाएगा और ये वायरस मर जाएगा और इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसने इतना इफेक्ट शो किया है। उन जगहों पर जहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ऊपर था वहां पे भी वायरस फैला है और फैल रहा है, लेकिन ये बात जरूर है कि सब लोगों का ख्याल है कि जून जुलाई में कैजुअल का दौर काफी ज्यादा कम हो जाएगा और फिर दोबारा शायद फॉल में दोबारा से जैसे कि एपिडेमिक आती है जैसे फ्लू भी आती है हर फॉल वो दोबारा आए।
कोरोना वायरस के फैलते ही दुनिया भर की मईशतों को अब तरी का सामना है। यही वजह है कि सदर ट्रंप मुल्क को जल्द अज जल्द खोलने की बात करते हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद कहते हैं कि जिन रियासतों में कोरोना वायरस की वबा ज्यादा फैली है वो शायद लॉकडाउन फौरी खत्म करने का फैसला न कर सकें। इस वक्त सवाल ये है कि आया जो लोग कोरोना वायरस का शिकार होकर सेहतयाब हो चुके हैं वो इससे हमेशा के लिए महफूज हो गए हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद कहते हैं कि इसके लिए एंटीबॉडीज टेस्ट पर इन्हिसार किया जा रहा है।
सबसे ज्यादा काम जो है वो एंटीबॉडी टेस्ट पे हो रहा है, इवन सिर्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट पे नहीं एंटीबॉडी टेस्ट पे, जिसमें कि आप ये पता लगा सकते हैं कि अगर कोई बंदा जिसको कोरोना वायरस में भी वो इन्फेक्टेड है वो सिम्टोमेटिक नहीं था, उसको कोई बुखार नहीं था, खांसी नहीं थी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं थी, लेकिन वो उससे पॉजिटिव हो गया, तो अब उस टेस्ट से एंटीबॉडी टेस्ट से पता चलेगा कि उसकी इम्यूनिटी कितनी है और उस एंटीबॉडी इम्यूनिटी से पता लगाएंगे कि आगे इम्यूनिटी जनरल पॉपुलेशन में कितनी जा रही है और वो किस तरह से इम्यून है और हम ये अगले छह महीने से दो साल में पता चलेगा कि कितने लोग इसको बेसिकली टॉलरेट कर पाते हैं, हर्ड इम्यूनिटी कितनी बढ़ती है और कितना सेफ है लोगों का।
मगर लोगों की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। ये तब्दीली किस हद तक होगी इसके बारे में तो वक्त के साथ ही कुछ पता चलेगा।
दुनिया की जिंदगी चेंज हो जाएगी, लोगों का लिविंग स्टाइल चेंज हो जाएगा, लोगों का मेल मिलाप चेंज हो जाएगा, वर्किंग कंडीशन चेंज हो जाएगी, ट्रैवलिंग प्लान चेंज हो जाएंगे।
कोरोना वायरस का खौफ माशरती जिंदगी को कैसे तब्दील करता है इसका इल्म तो वबा के थमने के बाद ही होगा, मगर सहम और बेयकीनी की फजा जल्द खत्म होती नजर नहीं आती। मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से कोरोना के बारे में हमारा ये प्रोग्राम खत्म होता है। यास्मीन जमील को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
दिस इज VOA न्यूज।